हम रोज बाबा के महावाक्य सुनते हैं, लेकिन वो भक्ति मार्ग की तरह ऐसा नहीं लगता है कि जैसे रोज मंदिर में जाना होता है, एक आरती एक भजन कर लिया और वापस आ जाते हैं, और मुरली भी कहीं हम ऐसे ही सुन करके वापस आ जाते हैं, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन यदि हम बाबा के महावाक्य को इतना महत्व दे कि वो महावाक्य हमें मनुष्य से देवपद दिलाने वाला है, इतने श्रेष्ठ संकल्प की वो रचना है कि ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हमें कोई सुना नहीं सकता है, तो मुरली का महत्व हमारे पास रहेगा। और न सिर्फ मुरली सुन करके चले जाएं, लेकिन रोज बाबा हमें होमवर्क देते हैं, और वो होमवर्क यदि हमने आज नहीं किया तो कल डबल हो जाएगा, कल नहीं किया तो परसों और बढ़ जाएगा, और होमवर्क होमवर्क ही रह जाता है, क्योंकि हमारी लाइफ में हमने कोई लेसन तो पढ़ा नहीं। तो जब बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो उसमें से कोई एक बात जिससे मेरी जीवन में परिवर्तन आ सके, ऐसी बातों को हम ले लें। और आज बहुत अच्छा एक शब्द था मुरली के अंदर कि तुम बच्चों के ख्यालात कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, आलीशान और रॉयल होने चाहिए। आलीशान किसको कहते हैं? आलीशान संकल्प होने चाहिए हमारे श्रेष्ठ। नहीं, कोई ऐसी चीज आप देखते हो, चाहे आप कलयुगी महल को देखने जाते हो, तो उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं कि महल बड़ा आलीशान है, और वो आलीशान में हमने क्या देखा? वहाँ जो आर्ट वर्क किया हुआ होता है वो देखते हैं, या तो मंदिर को भी हम कहते हैं ये मंदिर बहुत आलीशान है, क्योंकि जो कारीगरी अंदर की हुई होती है बारीकाई से, इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया होता है वो एक आकर्षित करने वाला होता है ना। और बाबा कहते तुम बच्चों के ख्यालात बड़े आलीशान होने चाहिए। क्या हम चेक करें कि मेरे ख्यालात कैसे हैं? ख्यालात यानी संकल्प, मेरे विचार कैसे हैं? किसी को भी देखते हुए पहले विचार हमारे अंदर कौन से आते हैं? बॉडी कॉन्शियस के आते हैं या सोल कॉन्शियस के आते हैं? जब हम कोई भी व्यक्ति को देखते हैं तो पहले आउटलुक देखते हैं ना, कि उसने कैसा ड्रेस पहना है, कैसे अपने को तैयार किया है, क्या विचार चलते हैं मन के अंदर। और यदि मेरे आलीशान ख्यालात हैं तो मैं उसकी अंदर जो आत्मा है वो आत्मा को देखने का प्रयास करूंगी। वो आत्मा चाहे कैसी भी है, कभी भी ज्ञान में आई हो, लेकिन उसने भगवान को पहचान लिया है। दृष्टि के नाते से हम सभी आपस में भाई भाई हैं, तो ये मेरे भाई हैं ये संकल्प आता है? कभी कभी आता है, कभी कभी शायद नहीं आता हो, लेकिन इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहला पाठ बहुत अच्छी तरह से हमें पक्का करना है। दादी जान की रोज हमें ये पाठ पक्का कराती हैं, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है ना? ये कितने सालों से बाबा की बातें सुन रहे हैं, और ये जैसे के अंदर भरा हुआ है कि मैं कौन हूँ। क्या इतना कुट कुट के हमारे अंदर भरा हुआ है कि मैं कौन हूँ? तो जब भी हम किसी को देखते हैं तो आत्मिक दृष्टि हमें बनानी है, उसी आधार से हमारे विचार, जो भी विचार हम क्रिएट करेंगे वो विचार उनसे पता चलता है कि मेरा दृष्टिकोण कैसा है। दृष्टि जाती है तो दृष्टिकोण का पता चलता है। तो बाबा ने सहज हमें बताया है कि बच्चे अपने संकल्पों को चेक करो, और सत्य होते हैं उसी आधार से वाणी भी निकलती है, और वाणी के आधार से फिर व्यवहार में आते हैं। कभी हम संकल्प कोई कहते हैं हम ऐसे ही बोल देते हैं, नहीं, सूक्ष्म में हमारा मन काम करता है, और बहुत समय का अभ्यास हमारे अंदर है तो वो बहुत काल का हमें मदद करता है। तो आज भी बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी होकर के रहो, ये भी बहुत काल का अभ्यास चरमुखी रहने का भी। और जब अंतर्मुखी रहते हैं तो हम अपने अंदर को जांच कर सकते हैं, और अंदर में क्या जांच करना है कि आज जो मेरा विचार है कल मेरा विचार कैसा होना चाहिए, और कल जो मेरा विचार था यस्तरडे जो कल गुजर गया उसकी भेंट में आज का विचार कुछ प्रोग्रेस हुआ है, मेरा देखने का एंगल, मेरा सोचने का एंगल, उसके आधार से देखने का एंगल, बोलने का एंगल, व्यवहार में इंटरेक्शन में आने का एंगल में कोई परिवर्तन आया है? क्योंकि संकल्प एक बीज है, जैसे खेतों में बीज बोने से पहले धरती को तैयार किया जाता है, क्योंकि वैसी धरनी में अगर आप बीज बोते हैं तो बीज भी व्यर्थ जाता है, फल मिलता नहीं है। तो धरती को पहले तैयार किया जाता है, बरसात आने से पहले जो खेती जानते हैं वो ये बात जानते हैं अच्छी तरह से। तो संकल्प हमारा बीज है, और वो बीज को बोने से पहले मेरी आंतरिक दृष्टिकोण को बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है कि ये संकल्प का बीज जो मैं बोती हूँ उसके ऊपर फल कौन सा निकलेगा, और हमेशा हम क्या चाहते हैं कि बीज फल जो मिले वो बहुत अच्छा फल मिले, ऐसा चाहते हैं ना, फल मीठा हो, फल आनंद प्राप्त कराने वाला हो। तो मेरा संकल्प को भी मैं यदि चेक करूं तो क्या मेरा संकल्प मुझे मीठा फल देगा? क्योंकि संकल्प करने के बाद हम एक्शन में आते हैं, कर्म में आते हैं, और जो कर्म हम करने जा रहे हैं बाबा यही कहते हैं त्रिकालदर्शी बन करके कर्म करो। त्रिकालदर्शी बनने का मतलब क्या है? जो कर्म जो संकल्प में क्रिएट करने जा रही हूँ उसी आधार से जो मैं कर्म करूंगी उसका आदि मध्य और अंत क्या होगा, अंत यानी उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो वो रिजल्ट को लक्ष्य में रखते हुए हम अपने संकल्पों को क्रिएट करें, क्योंकि यही संकल्प जिसके आधार से मैं अपनी आंतरिक स्थिति को बना सकती हूँ। आप हमेशा जानते हैं कि कोई भी फूल का पौधा उगाना हो तो उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमारे गार्डन में जो घास फूस उग जाता है उसके लिए कोई मेहनत है? दो दिन आपने साफ किया और तीसरे दिन वापस दिखाई देता है। हमारे व्यर्थ विचार वो घास फूस की तरह है। लेकिन श्रेष्ठ संकल्प को यदि रिजल्ट हमें लाना हो तो उसके लिए अटेंशन देना पड़ता है, हवा पानी सब देखना पड़ता है, सूर्य का प्रकाश भी मिलना पड़ता है उसको। तो हमारे विचार किस प्रकार के हैं, कौन सी कैटेगरी के हैं? जैसे हम हमेशा बाह्य देखाव को, बाह्य चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कि जैसे ड्रेस की बात करती हूँ कि पहले जैसा कपड़ा था उसकी भेंट में आज कपड़ा रिफाइन हो गया। पहले जो मोटा मोटा कपड़ा का पहनते थे, ड्रेस पहनते थे या साड़ियां पहनते थे, आज वो पहनते हैं नहीं, और आज क्या देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी वाली चीज ही हमें अपने शरीर के लिए चाहिए। क्या हमने कभी ये सोचा है कि मेरे संकल्प की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? कोई कपड़ा यदि मुझे पसंद नहीं आता है, इवन कलर पसंद नहीं आता है, मटेरियल पसंद नहीं आता है, तो हम उसको यूज नहीं करते हैं। इतना ही अटेंशन मेरा संकल्प के ऊपर रहता है कि ये संकल्प मेरे काम का नहीं है, क्यों मैं उसको व्यर्थ क्रिएट करती हूँ? ये संकल्प क्रिएट करने के बाद उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, फिर भी हम एक्शन में आते हैं, कर्म में आते हैं। तो हमेशा जैसे बाह्य हमने परिवर्तन कर लिया, भोजन की भी क्वालिटी बदल गई ना अभी तो, पहले क्या खाते थे और अब क्या खाते हैं, हर चीज में अभी देखते हैं कि इसमें कितना न्यूट्रिशंट है ना। तो ऐसे ही मेरे विचारों में भी वो क्वालिटी है जो विचार मेरी स्थिति को बनाने वाला है, जो विचार मुझे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाला है, वो विचार कौन सी क्वालिटी के हैं। तो बीच बीच में हम अपने विचारों को चेक करते चले जाएं कि कैसे विचार हमें उत्पन्न होने चाहिए। और विचार कोई ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, विचारों क्रिएट करने के लिए भी क्या चाहिए, ये जो हमारे कर्मेंद्रिय है ना, वो विचार को क्रिएट करने मदद कर रही है। आंखों से कुछ देख लिया उसके बाद मन के अंदर विचार चलते हैं, कानों सुन लिया फिर विचार करते हैं, और जब हम बोलते हैं कई बार बिना बोल देते उसके बाद विचार आता है कि ऐसा नहीं बोलते थे तो अच्छा, जब झगड़ा बढ़ जाता है फिर ख्याल आ रहा है इससे तो अच्छा था कि मैं शांत रहती थी, लेकिन तब तक तो रिजल्ट मिल गई। तो हमें विचारों को क्रिएट करने के लिए अपनी कर्मेंद्रियों को डिसिप्लिन आना बहुत जरूरी है। विचारों मन के अंदर विचार चलते हैं, हमने आंखों से कुछ देख लिया, जब देखते हैं तो नेगेटिव संकल्प स्वाभाविक आते हैं, लेकिन तुरंत बस ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए कि नेगेटिव को मैं पॉजिटिव में परिवर्तन कर दूं। हम कुछ सुनते हैं जहां हमें इंटरेस्ट होता है ना कोई भी बातों का, तो लोग आकर के सुना के जाते हैं, लेकिन जब हम इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो कोई सुनाएगा भी नहीं। कान किस लिए मिले हैं? भक्ति मार्ग में भी ये बात कहते हैं कि भगवान के भजन सुनने के लिए कान मिले हैं, और हम कान के अंदर क्या क्या बजाते हैं, और वो सिर्फ डाल ही नहीं देते फिर इसके ऊपर विचार चलाते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो किसी ने चिड़ा मेरे कान में डाला, मेरा मन खराब किया। होता है ना ऐसा, मन का बोझ आता है कि मेरे पास व्यर्थ कल्प पैदा होते रहते हैं। तो इसीलिए हमें कानों को भी ट्रेनिंग देनी है। हम कुछ पढ़ते हैं, कौन सी बातें पढ़ी, इस बातों से मेरी आत्मा की उन्नति होती है। ऐसी ही बातें पढ़ते रहते हैं जिससे हम दुखी हैं। तो इसलिए देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, ये हमें हमारे मन के आधारित एक्टिविटीज चलती रहती है। और मन के अंदर दृढ़ता, संकल्प में यदि दृढ़ता है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। बाबा, दृढ़ता सफलता की चाबी है। अगर किसी ने ठान लिया कि मुझे ये करना ही है, होता है। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिकल कहानी है कि एक 7 साल का बच्चा गुरुकुल में जा रहा है और गुरुकुल के बहुत कड़े नियम हुआ करते थे पहले के जमाने में। और वो बच्चे आने वाला है, वो गुरुकुल का नियम था कि उसको सुबह 5 बजे घर से निकलना है। घर का कोई भी व्यक्ति उसको छोड़ने नहीं जाएगा, कोई अनजान व्यक्ति को गुरुकुल छोड़ेगा। और गुरुकुल के लिए प्रस्थान करता है तो ये मुड़ के नहीं देखेगा। अब 7 साल के बच्चे के अंदर ये इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है। और वो बच्चा जब जाते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, कोई घुड़सवार आया है, बच्चे को आगे बिठाया है और गया। और वहां जाकर के उसको गुरुकुल के बाहर बैठना है आंखें बंद करके। 6 बजे वो पहुंच गया और आंखें बंद के बच्चा वहां बैठा। नियम यह था कि कोई उसको लेने आएगा अंदर से तब ही वो अंदर जा सकता है, तब तक उसको अंदर की नहीं है। बच्चा बैठा रहा, 7 बजे थोड़ा हलचल शुरू हुई, जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते आने लगे, कोई बच्चे उसको, जैसे स्कूलों में होता है नया विद्यार्थी आ रहा है तो कैसे उसको तंग करते हैं, तो इसको भी कोई थपार के जाता है तो कुछ बोल करके जाता है ताकि उसकी आंखें खुले। लेकिन बच्चा बहुत पक्का था, इच्छा शक्ति उसकी मजबूत थी कि उसने आंखें नहीं खोली। उसके बाद दोपहर हो गई, भूख भी लगती है, 7 साल का बच्चा है। शाम को वापस गुरुकुल का एक बाप अपने घर जा रहे हैं, वापस बच्चे उसको तंग करने लगे लेकिन वो आंख बंद करके बैठा है। फिर शाम हो गई, सूरज ढल गया, अंधेरा हो गया, उसके बाद कोई आया, शाम को 7 और उसको अंदर लेके गया। इतनी दृढ़ता थी उस आत्मा के अंदर। एक छोटा बच्चा ये कर सकता है, अगर आपको चेक कर सकते हैं कि मेरे में विल पावर कितना है, क्या मैं फास्टिंग कर सकती हूँ। यदि अपनी विल पावर को बढ़ाएं, संकल्प में यदि दृढ़ता नहीं है तो कई प्रैक्टिकल बातें हम अपने जीवन में कर सकते हैं जिसके आधार से हम अपने अंदर दृढ़ता को मजबूत कर सकते हैं। समझो आप अपने घर में गैलरी में खड़े हैं, आप जो आधे घंटे के लिए मुझे खड़े रहना है लेकिन मैं नीचे नहीं दूंगा। कई बार विचार आएंगे नीचे देखने का। हम अपने संकल्प को यदि दृढ़ बनाना चाहे तो अपने आप को बांधना पड़ता है। गैलरी में खड़े हैं और आधा घंटा नीचे नहीं देखेंगे, क्या हम अपने आप को ऐसा चेक कर सकते हैं? आप सोचेंगे इनसे मुझे क्या फायदा? कहती हूँ हाँ, फायदा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ एक फायदा कि जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा कि आज मैं एक दिन फास्टिंग करती हूँ, दूसरी बार मुझे दो दिन करने का प्रेरणा मिलेगी। हम जा रहे हैं यहाँ से कहीं दूर, ये सोचो कि ये कहीं देखें, अपने मन को ट्रेनिंग देने के लिए। फिर क्या होगा कि आखिर में अपना मन हार जाएगा और यही सोचा कि अब ये जैसे डायरेक्शन देता है वैसा ही करना ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर वो विल पावर आ जाता है, मनोबल हमारा दृढ़ बन जाता है। तो छोटे छोटे प्रयोग करके हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम योग में बैठते तो हैं, लेकिन योग में भी हमारा मन कॉन्सेंट्रेट एकाग्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि संकल्प को ट्रेनिंग नहीं दिया है। अगर संकल्प एक वाह में बढ़ते जाते हैं, एक ही दिशा में चलते जाते हैं, तो वो संकल्प मुझे कॉन्सेंट्रेशन करने में मदद करता है, एकाग्र होने में मदद करता है। लेकिन मन को हम आवारा छोड़ देते हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ता रहेगा। लेकिन जब योग में बैठते समय भी यदि मन को कोई ना कोई लक्ष्य दे देते हैं, तो वो लक्ष्य को पाने के लिए पुरुषार्थ करेगा, और बीच बीच में हमें लक्ष्य को याद कराना पड़ेगा अपने आप को कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। सुनते आ रहे हैं कि मन में बहुत ताकत है। आप सोचो, हनुमान एक पहाड़ को उठा सकता है, उसको वो पहाड़ भी एक छोटा सा लगा। मन के अंदर वो ताकत है। हम चाहते हैं कि हम कुछ करें, अपने लिए भी कुछ करें, तो मन के अंदर एक बीज बोना पड़ेगा, संकल्प का बीज बोना पड़ेगा अपने प्रति कि मुझे कुछ हासिल करना है, तो संकल्प रूपी बीज को बोना पड़ेगा और रोज उसको और दृढ़ता का पानी देना पड़ेगा। जब हम दृढ़ता का पानी नहीं देते हैं, तब तक वो अंकुरित नहीं होता है, संकल्प रूपी बीज भी फलीभूत होता है। कहां पर भी बाबा कहते हैं कि कलराठी जमीन में भी फल उग सकता है। हमने देखा दुबई डेजर्ट है, लेकिन वहाँ ये लोग इतने अच्छे अच्छे फूल उगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि दुनिया भर से लोग उनका वो मेरिकल गार्डन देखने के लिए आते हैं। डेजर्ट में इतने सुंदर फूल उगाना, लेकिन हाँ वहाँ करते हैं, बहुत मेहनत करके कुछ बना लेते हैं, एक दुनिया को दुनिया के लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो जब डेजर्ट में फूल उगा सकते हैं, तो हम तो ऐसी जगह पर बैठे हैं, भगवान की भूमि पर बैठे हैं, तो बाबा तो हमें ही मनुष्य से देवता बनाने वाले हैं, किसी और को थोड़ी बनाएगा। हमें ही बाबा ने सिलेक्ट किया है, किसी और को नहीं। आपके गांव में, आपके शहर में कितने लाखों लोग होंगे, लेकिन भगवान की नजर मेरे पर पड़ी। अभी मुझे बाबा ने क्यों सिलेक्ट किया है, अगर ये बात को सोचो कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी बात थी जो भगवान को पसंद आई है। मेरे अंदर कौन सी ऐसी विशेषता थी जो बाबा ने मेरी विशेषता को पहचाना है और अपना बनाया है। हाँ, दुनिया के अंदर बहुत नामी गामी लोग हैं। हाँ, बाबा ने आज भी कहा कि धनवान लोग थोड़ा सा होता है और नशा कितना, और उनको ये नहीं पता है कि ये भूले बाबा के बच्चे क्या से क्या बन जाएंगे। तब दुनिया देखती रहेगी। इवन भगवान की भी नजर उन आत्माओं के ऊपर है। बाबा हमेशा कहते हैं ये बात को कि जो दुनिया की नजरों में है वो भगवान की नजर में नहीं है, और जो भगवान की नजरों में है दुनिया वाले उसको पहचानते नहीं है। तो क्या मैं भगवान की नजर में हूं? बाबा की नजर मेरे ऊपर बनी रहे वो बहुत बड़ी कृपा दृष्टि है। तो जैसे हम अपने विचार क्रिएट करते जाएंगे उसी आधार से स्थिति बनाते जाएंगे। और आप हमेशा जानते हो कि जो लो चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट को खींचता है। क्या मैं वो मैग्नेट हूं जो भगवान मुझे खींचे? अगर मेरे मैग्नेट के ऊपर जंक लगी हुई होगी, कोई ना कोई अवगुण होगा, कमियां होंगी, कमजोरियां होगी, परम पवित्र परमात्मा मुझे खींच नहीं सकेगा। तो जो भी अपने अंदर जंक है, चाहे वो अवगुणों की है, चाहे वो कमियों की है, कमजोरियों की है, हमारे पुराने संस्कार अभी तक हैं, उनको बाबा की याद के माध्यम से निकालने का पुरुषार्थ करें। ऐसे आलिशान ख्यालात रोज क्रिएट करते जाएं, रोज चेक करें, आज कौन सा मुझे आलिशान ख्यालात आया, आज कौन सी ऐसी बात है जो मैं अपने अंदर वो नवीनता को भरूं? क्योंकि रोज यदि नवीनता अपने अंदर लाएंगे ना, तो पुरुषार्थ इजी हो जाएगा। क्योंकि पुरुषार्थ में भारीपन आने का कारण क्या है? नवीनता नहीं है अपने अंदर। अगर आप शरीर को भी रोज एक ही प्रकार का भोजन दो तो क्या होगा? 10 दिन 15 दिन के बाद आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। एक ही प्रकार का खाना खाना है तो खाने से आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही यदि मेडिटेशन में भी, योग में भी, एक ही प्रकार के विचार यदि हम अपने के अंदर करते रहेंगे तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसीलिए रोज नवीनता चाहिए। रोज जैसे शरीर को नए धुले हुए फ्रेश कपड़े पहनाते हैं, अंदर भी रोज फ्रेश विचार क्रिएट होने चाहिए। ऐसे में ती बनाऊं अपने लिए ही कि ये विचारों में नवीनता दिखाई पड़े। और हर एक को नवीनता पसंद है ना? तो कैसे मैं अपने विचारों में, अपने पुरुषार्थ में नवीनता को लाऊं? और समय तो बहुत गति से आगे बढ़ रहा है, और उसके आधार से संकल्पों की गति भी, अच्छे संकल्प की गति बहुत स्लो होती है, लेकिन व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट है। और वो व्यर्थ संकल्प पता नहीं कौन से जंगल में हमें ले जाए, और जब जंगल में चले जाते क्या होता है? जंगल में कौन मिलेगा आपको? तो व्यर्थ संकल्प भी वैसा है जो हमें खुद ही डरावना लगा। तो इसीलिए रोज अच्छे संकल्प को क्रिएट करो, और रोज रात को सोने से पहले अच्छे विचारों में सो जाओ। बाबा को याद करो खटिए में बैठ कर, और कल मुझे क्या करना है वो बातों को यदि हम याद रहे हैं कि कल के दिन कौन स्थिति रखनी है, मुझे खुश रहना है या तो मुझे संतुष्ट रहना है, कल के दिन मुझे सबको भाई भाई की दृष्टि से देखना, कल के दिन मैं बहुत अपने आप को उमंग उल्लास में रखूंगी, इस प्रकार के होमवर्क हम रात से ही अपने आप को दे दें। तो उठ करके वो विचारों से उठे तो सुबह का समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमें मदद करेगा। हाँ, इन उमंग उत्साह है ना कोई ऐसी बातें मैं इनके लाऊं ताकि उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे, इनके पुरुषार्थ में नवीनता आती रहे। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये बात को हम रात को डालें तो सुबह में वो सबकॉन्शियस माइंड भी हमें मदद करता है कि पुरुषार्थ में कौन सी बातें मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, कहां मेरा स्वभाव, कहां मेरा पुराना संस्कार, कहां किस कोई पुरानी बातें, पराई बातें, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे आगे बढ़ने में रोक रही हैं। तो वो बातों को ओवरकम करके हमें हाई जंप दे आगे बढ़ना होता है। तो समय के साथ साथ चलना, समय से आगे चलना वो मेरे हाथ में है। कहीं ऐसा न हो कि समय टीचर बन जाए, समय आधार से सीखना पड़े, क्योंकि अभी तो भगवान टीचर बन करके हमें पढ़ा रहा है, कहीं समय टीचर बन करके हमें न पढ़ाए। तो ये को हम अपने अंदर अंडरलाइन करें और ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसे संकल्पों का बीज अपने अंदर बोए कि वो बीज बहुत अच्छा फल हम लेकर के मिले। तो संगम युग बहुत अच्छा है, प्राप्तियों का समय है, भगवान से मिलन मनाने का समय है। अभी भले अव्यक्त पाठ पूरा हो गया लेकिन बाबा ने ये बात जरूर कही है कि जो बच्चे अव्यक्त मिलन को अव्यक्त मिलन के रूप में मानेंगे, बाबा उन्हें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराएंगे। और हमने उसे हमने ये अनुभव किए हैं, तो वो कोई वीडियो देख रहा है, उनको तो यही लगा कि सचमुच में बाबा आए हैं और बाबा हमारे से मिल करके गए हैं। तो हमारी बुद्धि इतनी क्लियर हो, इतनी क्लीन हो कि बाबा जो मुझे कराना चाहे वो अनुभव में कर सकूं। क्योंकि बुद्धि अगर एंगेज होंगी कोई ना कोई बातों से, कोई बातों को पकड़ के रखा होगा ना हमारी बुद्धि ने, तो बाबा की बातें बुद्धि में नहीं बैठेगी क्योंकि बुद्धि ऑलरेडी ऑक्यूपाई है। जैसे आप पतीले में दाल मिला ही भर हुआ हो तो पतीले में आप कुछ डाल सकेंगे? हमारा बुद्धि है ना पे, बुद्धि रूपी पाको बाबा वाक्य को संग्रहित करने के लिए है, लेकिन अगर हमने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, बिजी है, अंदर बाबा की बातें ठहरेगी। इसलिए कि रात हो जाती है मुझे बाबा की मुरली कितनी याद रही और बातें कितनी याद रही, किसी ने कुछ कहा वो याद रहा या बाबा की बातें याद रही। तो हम अपने खुद के स्वयं टीचर बने और खुद अपने आप को हम चेक करें कि कैसे हम अपने आप को लायक बरतें, क्योंकि बाबा तो ज्ञान सुना दे हैं लेकिन लायक बनाना मेरा काम है। जैसे लौकिक में भी बाबा पढ़ाएगा उसको ही रिस बनाएंगे, अपना जो बिजनेस होगा वो लायक बच्चे के हाथ में सौंपेंगे। तो मुझे भी लायक अपने आप का है, और जैसे जैसे मैं अपने आप को गुणों से भरती जाऊंगी, ज्ञान रत्नों से भरती जाऊंगी, तो मैं अपने आप को मदद कर रही हूँ। और अंत में क्या काम आएगा, रिजल्ट जब आउट होगी तो रिजल्ट किस आधार से आउट होगी, हमारी स्थिति के आधार से, और स्थिति हमारे संकल्पों के आधार से बनती है। मेरी स्थिति मुझे रिजल्ट दिलाएगी। छोटी छोटी बातों अपसेट हो जाते हैं, ना जाते हैं, उससे नहीं हुई स्थिति होती है ना, वो भी बिगड़ जाती है। क्योंकि हमने इतने सालों मेहनत किया है स्थिति बनाने में, और वो छोटी बात मेरी स्थिति को नीचे ले आती है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, जिस बातों के आधार से मैं अपने आप को नीचे ले आती हूँ, वो चेक करें हम। और जहाँ अटेंशन देना होता है वहाँ हम अटेंशन देकर के आगे बढ़े। परिस्थितियाँ तो आएंगी, पेपर्स तो आएंगे, लेकिन वो पेपर्स आपके लिए आते हैं। परीक्षा आती है और हम कहें मुझे पेपर्स नहीं देने हैं, तो क्या होगा? आप दूसरे क्लास में जाएंगे? नहीं। तो खुशी खुशी से पेपर्स का आह्वान करो और पहले से तैयारी करो कि ऐसे पेपर आएंगे उसमें मैं पास होंगी या नहीं। क्योंकि शरीर के हिसाब किताब के पेपर तो कभी भी अचानक आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी मेंटली पावर, मन के अंदर वो पावर चाहिए कि वो पावर से हम अपनी बीमारियों को भी सहज रिपोर्ट को भी पार कर ले। एक भाई मुझे मिला अभी, कह कि बेन में कैंसर मुझे हुई है लेकिन मैं कैंसर को भी एंजॉय करता हूँ। देखो कैंसर का नाम सुन करके तो लोग कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन कहता है मैं कैंसर को भी एंजॉय करता हूँ। ऐसे ही एक भाई और मिला, मैं कहीं जा रही थी और फ्लाइट में मेरे बाजू में एक बिजनेसमैन बैठा था, वो बड़ा बिल्डर था, और उसने कहा कि बेन क्या करें, अभी बिजनेस इतना डाउन है कि हमारा सारा पैसा कंस्ट्रक्शन में रोका हुआ है, अभी बिके तो हमें पैसा। मैंने कहा कि भाई आपके पास टाइम हो तो हमारा 7 दिन का मेडिटेशन का कोर्स करो। तो कहता है बेन टाइम ही नहीं है। अभी आपका बिजनेस नहीं है तो टाइम भी होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, क्योंकि जिसके भाग्य में नहीं होता है ना वो हमेशा समय का बहाना बनाते हैं। फिर 2 साल के बाद वापस वो भाई मुझे कोई एक जगह पे मिल गया। मैंने भाई ने पूछा बेन पहचाना? हमने याद किया तो मुझे याद तो नहीं आया। तो भाई ने कहा कि बेन मैं आपको फ्लाइट में मिला था। तो मैंने कहा हाँ याद आया अभी। तो भाई ने कहा कि बेन अभी हमारा सब सही है। मैंने पूछा अभी तो आपके पास टाइम होगा ना, सब कुछ ठीक हो गया है तो अभी आओ आप। लेकिन भाग्य में नहीं है, भाग्य में होता है उसको ही भगवान मिलता है। जिनके भाग्य होता है वही पुरुषार्थ करते हैं और वही देव पद को प्राप्त कर सकते। तो हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें भगवान ने, जिनको भगवान ने अपना बनाया है। तो ये भाग्य की हम हमेशा स्मृति रखें, अपने भाग्य के ऊपर नाज रखें और पुरुषार्थ में आगे बढ़ते चले जाएं। ओम शांति।